लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवममपत्थसोखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य। उनकी कथा हमने पढ़ी इसमें से। अभी उसके बाद ये चर्चा अपनी जो चल रही है, पहले तो मंगल वगैरह संबंधी अपने चर्चा चली ना, यहाँ जो छह खंड है उनके नाम क्या है, क्योंकि आप आए थे नहीं थे दो चार दिन, तो छह खंडों के नाम क्या है उसकी बात चली। तो उसका पहले का नाम है जीवस्थान। देखो ये पेज नंबर है 73। हाँ 73 पेज निकाल, ये बीच वाला जो पैराग्राफ है ना, कि अब जीवस्थान के अवतार का, अवतार यानी वो उत्पत्ति उसकी, वर्णन प्रतिपादन करते हैं। अर्थात पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य ने अब ये छह नाम बताए, जीवस्थान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध नामक, जिस षटखंडागम की रचना की। ये छह खंड है अलग अलग उसकी। तो यहाँ अभी ये जीवस्थान की बात यहाँ चलेगी। उसमें वो उन्होंने ग्रंथ की उत्पत्ति को अवतार कहते वो चार प्रकार का बताया था, नीचे के पैराग्राफ में, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुभव। उसमें उपक्रम किसको कहते हैं, तो अर्थ को समीप करना उसको उपक्रम कहा था,
और उसको
समीप करना यानी अर्थ समझ में आना। उस उपक्रम के पांच भेद बताए थे, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इसके भी हमने भेद प्रभेद देखे थे। अनुपूर्वी ने पूर्वानुपूर्वी, एक से क्रम से नाम लेना, शुरू से अंत तक वो पूर्वानुपूर्वी है। उल्टे क्रम से कहना पश्चातानुपूर्वी है। एट रैंडम कैसे भी कहना वो यथातथानुपूर्वी है। ये अनुपूर्वी के बाद हमने नाम, अनुपूर्वी के बाद उपक्रम, उपक्रम अनुपूर्वी के बाद नाम की बात है। तो नाम के अलग अलग प्रकार, जैसे हमने पहले निक्षेप के बारे में देखे थे, नाम निक्षेप, वैसे यहाँ 10 प्रकार के नाम बताए। अब वो प्रकार छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, प्रमाण यानी यहाँ प्रमाणिकता बतानी है, केवल उसका प्रमाण यानी परिमाण बताना ये बात नहीं है, उसको वो परिमाण कहते हैं। यहाँ प्रमाण यानी प्रामाणिकता, ग्रंथ की प्रामाणिकता बतानी है। तो इसमें इस ग्रंथ के बारे में जीवस्थान नाम का जो है वो प्रामाणिकता में क्या लेना है यहाँ, तो वहां तो शुद्ध शुद्ध भाव प्रमाण रूप लेना है इसका, क्योंकि प्रमाण में भी उसमें देखो पेज नंबर 81 मैं फास्ट ले रही हूँ, क्या क्या पढ़ा था उसको आपको ख्याल में आया। देखो जो समाधान के दूसरा पैराग्राफ, यहाँ से प्रमाण उपक्रम को बता रहे हैं, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नये प्रमाण। तो उसमें द्रव्य प्रमाण में संख्यात, असंख्यात और अनंत, क्षेत्र प्रमाण में एक प्रदेश आदि क्षेत्र प्रमाण करते, काल प्रमाण में एक समय, एक अवधि आदि, भाव प्रमाण में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से भाव प्रमाण पांच प्रकार का है। भाव प्रमाण में यानी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम वो वाली बात यहाँ ली है और उसके पांच भेद भी है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और नए प्रमाण, तो ये प्रमाण का एक भेद है, नए ये प्रमाण का भेद है, परंतु वो भी प्रमाणिक है इसलिए वो नए प्रमाण। तो यहाँ सात भेद बताए, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूद्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत, या अन्य भी उसके भेद हो सकते हैं। इतना कहकर वहाँ उन्होंने नए प्रमाण की चर्चा की थी। उसके बाद प्रमाण के बाद वक्तव्य था, वो अभी नहीं हुआ है, हम पेज नंबर 83 पर आए। पहले जैसे हमने निक्षेप वगैरह लगाए थे वो सब चर्चा यहाँ ली उन्होंने। अभी वक्तव्यता को देखना, यानी वक्तव्य का, वक्तव्यता नाम का उपक्रम हमने वक्तव्यता में अनुकूल भी देखे, नाम देखे, प्रमाण देखे, अभी वक्तव्यता देख रहे। उपक्रम थे ये सारे भेद, यहाँ से पढ़ेंगे, अपना विषय आज का यहाँ से शुरू होता है। मिला 83 पेज पर। वक्तव्यता तीन प्रकार की है, नया पैरीग्राफ, सेकंड पैरीग्राफ। स्व समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता। यह स्व समय यानी वो समय सार में स्व समय शुद्धात्मा को कहते वो बात यहाँ नहीं है। स्व समय ने जिन मत और पर समय ने अन्य मत, दर्शन कहो या मत कहो, जैन दर्शन को स्व समय कहेंगे और अन्य मतियों उनके जो मत है उसको पर समय कहेंगे। ये शास्त्र में स्व समय का ही वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है अथवा विशेष रूप से ज्ञान कराया जाता है, उसे स्व समय वक्तव्य कहते हैं। और ये समझ में है, जिसमें अपने मत का बिल्कुल कथन होगा, कितने शास्त्र ऐसे परमत का कथन करके उसका खंडन किया जाता है। तो जिसमें अपने ही, जैसे छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, वो बस अपनी बात करेंगे, तो यह स्व समय वक्तव्य का। और उसके भाव को अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को स्व समय वक्तव्यता कहते। क्या कहते हैं? स्व समय वक्तव्य, वक्तव्य यानी कहना, कथन, वक्तव्य का अर्थ होता है कथन। तो जिसमें अपना ही केवल समय का यानी अपने जैन दर्शन की बात बताई हो तो स्व समय वक्तव्य है। और वक्तव्यता ताई ने उसका, वो तो उसमें ये लगाया ना, उसका उसका पना, जैसे हमने त्व लगाते हैं वैसे ता लगाया, स्व समय वक्तव्य, यानी उसकी विशेषता को स्व समय वक्तव्यता कहते हैं। यानी उसमें कौन सा भाव है, जैसे वृद्ध में वृद्धत्व कहते हैं, जैसे कोई सरल है उसमें क्या है, सरल, कोई आदमी सरलता है, वैसे यहाँ ले उसका भाव। पर समय मिथ्यात्व को कहते हैं, उसका जिस प्रावृत या अनुयोग में वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विशेष ज्ञान कराया जाता है, उस प्रावृत या अनुयोग को पर समय वक्तव्य कहते हैं। और उसके भाव को अर्थात उसमें होने वाली विशेषता को पर समय वक्तव्यता कहते हैं। देखो ये जैन आगम है, उसमें पर की कुछ बात ही नहीं करने, ऐसी बात नहीं है। अन्य अन्य मतियों में क्या क्या मान्यताएं है उसका भी वर्णन होगा, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचवा अधिकार है, क्या नाम है उसका, पांचवा अधिकार का नाम क्या है, विविध मत समीक्षा, अन्य अन्य के क्या मत है और उसमें क्या फॉल्स क्या है, वो सब उसमें वर्णन है। वैशेषिक क्या है, जैमिनी क्या है, पीतांबर क्या है, ढूंढारी क्या है और क्या क्या, अन्य अन्य बहुत सारी मत होता है। तो इसको कहेंगे पर समय वक्तव्य, और उसका जो भाव है उसको पर समय वक्तव्यता। ये जो जिनागम ने अपने ही आचार्यों ने सभी आगमों का, सभी दर्शनों का अभ्यास करके लिखा, ऐसे नहीं ये हमारा इसलिए बस इसी का कथन, ऐसा है वो पर क्या कहना चाहते हैं और वो कथन कैसे गलत है वो भी बताएंगे। जहाँ पर स्वसमय और परसमय इन दोनों का निरूपण करके परसमय को दोष युक्त दिखलाया जाता और स्वसमय की स्थापना की जाती है उसे तदुभय वक्तव्य कहते हैं और उसके भाव को अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को तदुभय वक्तव्यता कहते हैं। यानी ऐसे है ना, एक ही श्लोक होता है और एक ही दो लाइन है तो उसमें स्व समय का कथन है और उसी के द्वारा परमत का मंडन है। जैसे लोक के बारे में बताए ना, ये पूरे आकाश द्रव्य के मध्य में है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तो उसको बनाने वाले ये जो मत है उसका खंडन हो जाता है। ये ऐसे ऐसी बातें होती है उसके अंदर। इनमें से अभी हमारा ये जीवस्थान नामक शास्त्र, यहाँ जीवस्थान शास्त्र में स्व समय वक्तव्यता समझनी चाहिए क्योंकि इसमें स्व समय का ही निरूपण किया गया है। अब यहाँ आते हैं, फिर हमने अभी जो 73 पेज पर देखा था ना, अर्थाधिकार पांचवा भेद, उपक्रम का पांचवा भेद है अर्थाधिकार। यही बात यहाँ बता दें, मैंने पहले हमने अनुपूर्व देखी, नाम देखे, प्रमाण देखे, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अब प्रमाण, प्रमेय और तदुभय के भेद से अर्थाधिकार के तीन भेद है। उनमें से इस जीवस्थान शास्त्र में एक प्रमेय अर्थाधिकार का ही वर्णन है क्योंकि इसमें प्रमाण के विषयभूत प्रमेय का ही वर्णन किया गया। प्रमेय ने गेय इस तरह उपक्रम नाम का प्रकरण समाप्त हुआ, वो प्रकारण हुआ है, वो प्रकरण समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अभी मिथ्या तो का वर्णन अलग बात है, जीव में जो है वो अलग है और अन्य मतियों के कथन का वो बात अलग है। ख्याल में है ना, अन्य मतियों के क्या क्या मत है, पर समय ने मिथ्या मान्यताएं उसकी बात है, पर समय ने जैसे वैदिक क्या कहते हैं, बौद्ध क्या कहते हैं, उसकी बात इसमें नहीं होती है, उनके तत्वों का निरूपण इसमें नहीं है, ये कहना चाहिए। यानी यहाँ केवल ये कौन कौन सी मार्गणा है, क्या है उनमें, क्या है इसकी बात चलेगी, बाकी अन्य मतियों की बात नहीं चलेगी। मिथ्या तो गुणस्थान है तो उसका वर्णन करेंगे, जीव स्थान है तो उसमें मिथ्या तो गुणस्थान है तो उसका क्या स्वरूप है वो बताएंगे, परंतु मिथ्या मान्यताएं जो अन्य मतियों की है उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। अभी पढ़ेंगे ना आगे, आपको ख्याल आ जाएगा। ये अर्थाधिकार हो गया, अब फिर 73 पेज निकालो, 73 उपक्रम के भेद हमने देखे पांच, यहाँ लिखा था उसके ऊपर अवतार चार प्रकार का है। तेजल क्या क्या लिखे थे नीचे से दूसरा पेरेगा, अवतार चार प्रकार का है,
उपक्रम, निक्षेप, नय, अनुभव।
हाँ, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुभव। तो अभी निक्षेप की बात होगी, अभी तक हमने उपक्रम यानी अनुपूर्वी नाम, उपक्रम यानी अर्थ को समीप करना, उसमें अनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार देखे।
अभी निक्षेप,
हाँ अभी निक्षेप का वर्णन चलेगा। देखो ये निक्षेप किसमें लगाना है, जीवस्थान शब्द पर। पहले हमने मंगल शब्द पर लगाए, जो विषय होगा उस पर सब लगते हैं, तो अब यहाँ निक्षेप की चर्चा है। हाँ देखो, नाम जीवस्थान, स्थापना जीवस्थान, द्रव्य जीवस्थान और भाव जीवस्थान के भेद से निक्षेप चार प्रकार का है। वैसे मंगल हमने छह प्रकार के बताए थे, पर यहाँ चार तो लगते ही लगते हैं। क्षेत्र काल की बात हर जगह इन्हें लगाएंगे तो लगा सकते हैं हम इसको, परंतु ये मिनिमम ये तो चार लगने ही चाहिए। इस लिए चार बताए। जीवस्थान इस प्रकार की संज्ञा को, संज्ञा ने नाम, नाम जीवस्थान कहते हैं। जैसे हम किसी लड़के का भी जीवस्थान नाम रखेंगे ना, रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, वो नाम जीवस्थान। जिस द्रव्य में बुद्धि से जीवस्थान की आरोपना की हो उसे स्थापना जीवस्थान कहते हैं। ये हमारे सब वेद हुए ना विस्तार से, अब थे कि नहीं थे, निक्षेपों की चर्चा हुई थी।
एक, एक
निक्षेप जो है वो वस्तु में होते, गेय में डाले जाते, वस्तु का कोई नाम रखना वो नाम निक्षेप है। विदाउट एनी उसमें कुछ वो गुण होने चाहिए वो बात ऐसी कुछ नहीं है। स्थापना ने एक वस्तु में किसी अन्य चीज की स्थापना, हमने कह दिया कि हमारा राजा है और ये रानी है, तो हमने उस वस्तु में उस चीज की स्थापना की, ये स्थापना निक्षेप हुआ। द्रव्य निक्षेप है, वस्तु है, द्रव्य तो वही का वही है, उसके कोई अन्य पर्याय उनका वर्तमान में उसका उपचार से उस द्रव्य को वही कहना, यह है द्रव्य निक्षेप। मैं बिल्कुल स्थूल बता रही हूँ। और भाव निक्षेप यानी वर्तमान पर्याय उस पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव निक्षेप में ले लेते हैं, यानी उस पर्याय से परिणत। अब यहाँ देखते हैं
स्वभाव की अपेक्षा बात है, लेकिन यहाँ पे पर भी तरफ की बात है। प्रमेय
जीवस्थान में क्या बताया है, जीवस्थान ये क्या है, तो उसमें गेयों का वर्णन है। जीवस्थान शास्त्र में प्रमेय अधिकार है, प्रमाण का विषयभूत क्या है, विषय प्रमाण का, प्रमाण यानी ज्ञान का विषय, इसकी चर्चा। प्रमाण के बारे में, प्रमाण के भेद वगैरह उसकी बात यहाँ नहीं है, समझ जाती है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण वो बातें यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ जो प्रमाण का विषय क्या है उसकी चर्चा। नहीं नहीं अभी जो जीव स्थान में जो कुछ विषय आने वाला है ना वो सब जीव स्थान अभी आएगा ना, ये सब ये 14 मार्गणा वगैरह सब इसमें बताई जाएगी। अब देखो ये हमने चार देखे ना, नाम जीव स्थान, स्थापना जीव स्थान, ये दो हो गए। तीसरी लाइन, आगम और नो आगम के भेद से जीव द्रव्य जीव स्थान दो प्रकार का है। द्रव्य निक्षेप है ना, उसको द्रव्य जीव स्थान कहेंगे। अभी हमने इसके भेद देखे थे, तो देखिये आगम द्रव्य जीव स्थान किसको कहेंगे, जीव स्थान आगम को जानने वाला जीव जो वर्तमान में उसमें उपयुक्त नहीं है, यानी उसका उपयोग उसमें नहीं है। जैसे हमने जीव स्थान अभ्यास किया है, अभी वर्तमान में अभी हम अन्य कुछ कर रहे हैं, तो उस समय हमको या जीव को क्या कहेंगे, आगम द्रव्य जीव, द्रव्य शब्द लगा क्योंकि वो द्रव्य निक्षेप है। देखो अभी उनमें चौथी लाइन, जीवस्थान शास्त्र के जानने वाले किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य जीवस्थान कहते हैं। यानी ये आगम द्रव्य निक्षेप है और वो हम द्रव्य जीवस्थान पर लगा रहे हैं। अब नो आगम के भेद बताएं। आगम मैंने जानने वाला जीव, नो आगम मैंने वो नहीं जानना। नहीं जानने वाला कौन हो सकता है, उसका शरीर भी हो सकता है, वो स्वयं भी हो सकता है, उसका कर्म भी हो सकता है, अन्य भी कुछ बातें हो सकती है। एक तो उसके भेद क्या है, ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त का भेद से नो आगम द्रव्य जीव स्थान तीन प्रकार का। इनमें से आदि के दो अर्थात ज्ञायक शरीर और भावी सुगम है। देखो सुगम है ने क्या, ज्ञायक शरीर में जीवस्थान आगम को जानने वाले जीव का शरीर, उसको ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य जीवस्थान कहेंगे। उसके दो या तीन भेद करेंगे, भूतकाल का ज्ञायक शरीर वर्तमान का और भविष्यकालीन जो वो धारण करेगा उसको। फिर भूतकाल का भी कैसा है, उसने चुतचावी त्यक्त में भी वो प्रायोपगमन और इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान वगैरह वगैरह लेंगे। भावी में जीव को लेना, अभी नहीं जानकर भविष्य में वो जीव जानने वाला है, उसको भावी नो आगम द्रव्य जीव स्थान करेंगे। मैंने अभी आपने पढ़ाई नहीं की पहले जीवस्था, आप पढ़ने वाली हो तो आपको हम कहेंगे जीवस्था। हाँ क्यों?
आवी द्रव्य
नो आगम,
नो आगम
द्रव्य जीवस्थान, ये आपका नाम होगा। तो आदि के दो सुगम अभी तद व्यतिरिक्त बता रहे, जीव स्थानों के अथवा जीव स्थान शास्त्र के आधारभूत आकाश द्रव्य को तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव स्थान कहते हैं। अब वो जीव स्थानों के आधारभूत जो आकाश द्रव्य है या जो शास्त्र के आधारभूत जो आकाश द्रव्य है उसको यहाँ का आगम और नो अभी भाव निक्षेप लगा रहे। ये पहले उसकी सब द्रव्य निक्षेप की बहुत चर्चा की थी, इसलिए यहाँ केवल वो क्या है वो बता रहे। यहाँ पर आगम और नो आगम के भेद से भाव जीव स्थान दो प्रकार का, भाव में आगम में वो जानने वाला जीव लेना, वर्तमान में उसमें उपयोग वाला जीव स्थान शास्त्र के जानने वाले और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त जीव को आगम भाव जीव स्थान कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समासों को यानी गुणस्थानों को, यहाँ गुणस्थान को जीव समास भी कहने की पद्धति, नो आगम भाव जीव स्थान कहते हैं। ये जीव स्थान क्या है? तो ये जो 14 गुणस्थान है उसी को यहाँ जीव स्थान कहते हैं। स्थान का अर्थ कहते हैं, समझते हैं स्थान का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान वो स्थान है, स्थान चाहिए। स्थान यानी वेरिएशन इसे गुण स्थान, गुण यानी वहाँ पर्याय की बात है, जीवों के पर्याय की अपेक्षा जो भेद है उसको गुण स्थान कहते हैं, उसी को जीव स्थान कहते हैं। तो यहाँ जीव स्थान यानी 14 जीव समासों की बात है, ये हम जो 14 जीव समास है एक इंद्रिय द्विंद्रिय उसकी बात नहीं यहाँ पर, गुणस्थान क्योंकि मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थान बताए ना, 14 जीव स्थान वो क्या है? तो नो आगम भाव जीव स्थान कहते हैं, वो है शब्द रह गया वहाँ उड़ाना उसमें के ऊपर दिन भी आती है। समझ में आती बात? हाँ जीव स्थान का वो भाग एक भेद है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान
गुणस्थान
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम है। हाँ, मिथ्या दृष्टि हम ये समय दृष्टि है मिथ्या दृष्टि ऐसा वो भेद नहीं।
हाँ, वो एक से
यानी हम मिथ्या तो गुणस्थान कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। हाँ एक से 14 गुणस्थान है, हाँ उनको क्या कहेंगे? नो आगम भाव जीव स्थान, क्योंकि जीव उस भाव रूप से परिणत है वो उसका गुणस्थान है। इनमें से इस जीव स्थान शास्त्र में नो आगम भाव जीव स्थान निक्षेप प्रकृत है, प्रकृत है यानी वर्तमान में वो निक्षेप डाला है, इस तरह निक्षेप का वर्णन हुआ। ये जो शास्त्र है उसमें कौन सा निक्षेप लगता है उसकी बात हुई। अब नए की बात होगी, ये 73 पेज पर है ना, अभी उपक्रम निक्षेप फिर नए, नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर नयों का वर्णन करते हैं। ऐसे निक्षेप भी लोक व्यवहार के लिए डाले जाते हैं और यहाँ उसको जानने वाले वो नए हैं, तो लौकिक व्यवहार में हम नयों का बहुत प्रयोग करते हैं, पर उसको नए कहते मालूम नहीं है। दोपहर हो गई तो पूछते हैं ना, पापा आप चाय की कॉफी, कोई मेहमान है आप चाय की कॉफी, वो थोड़े चाय या कॉफी है, आप क्या लेंगे इसके लिए हम पूछते हैं। अब नीचे उतरे टैक्सी से जाना, ए टैक्सी इधर आओ, टैक्सी थोड़ी सुनती है, पर हम ऐसे प्रयोग तो लौकिक में बहुत होते ये कहना चाहते। तो नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता चल सकता, इसलिए यहाँ पर नयों का वर्णन करते हैं। उन नयों का खुलासा इस प्रकार है, यानी नये क्या होता है उसकी परिभाषा पहले बताएंगे। प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के, यानी वस्तु को सर्वांग से पहले जाना है हमने, तभी तो उसके किसी में मुख्य उसका करके उसका उपचार होता है। प्रमाण से जानी हुई, प्रमाण से कौन जानता है तो समझ दृष्टि, समय दृष्टि का ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है, समय ज्ञानम प्रमाण। इसलिए वो समय दृष्टि ने वस्तु को परी वो नित्य अनित्य जो कुछ जैसे वो जान लिया, वो द्रव्य की मुख्यता से वो नित्य कहेंगे, पर्याय की मुख्यता से अनित्य कहेंगे, वो उसके अभिप्राय पर निर्भर है। तो ये नए के द्वारा हम कहेंगे तो वस्तु प्रति समय बदलती है, परंतु उसमें वो सात शब्द गर्भित है उसका, प्रति समय बदलती है ना, वो किस अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा प्रति समय बदलती है, नए हुआ। वस्तु तो कायम है, मैं तो कायम हूँ, मैं कायम हूँ वो कौन से नए से, द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा, मैं तो अनादि अनंत हूँ। और पर्याय नए की अपेक्षा, अरे इसका क्या भरोसा, इस पर्याय कब नष्ट हो जाएगी, ऐसा कहते ना, ये नयों की अपेक्षा करते, वो नए कौन सा है वो हमको ख्याल नहीं देना चाहिए। जैसे हम कहते पराई वस्तु हमको चोरी नहीं करना है, दूसरे को हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हम किसी को मार ही नहीं सकते, कोई उठा ही नहीं सकते, वो नए अलग है, ये नए अलग है, कितने उपचार से होते हैं, कितने क्या है। तो ये नयों का लौकिक में तो यूटिलाइजेशन होता है, परंतु हमें समझना चाहिए किस नए से ये बात यहाँ हो रही है। तो देखो नयों का खुलासा पहले बता रहे, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में, यानी वस्तु का एक अंश, कोई एक धर्म, कोई एक गुण अंश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। यानी वो ज्ञान क्या कहते हैं, उस अंश रूप से पूरी वस्तु को देखते हैं। देखो आपको हाथी की कथा मालूम है ना, वो तो अंधों की, सात अंधों की, सुना हुआ, सात अंधे थे और उन्होंने हाथी को हाथ लगाया, तो एक प्रत्येक को पूछा कि कैसा है हाथी, एक ने कहा अरे हाथी तो सिर्फ खंभे के समान है, किसी ने पूछ कर वो दोरी के समान है, कोई ने दांत को हाथ लगाया, किसी ने वो कान को हाथ लगाया। हाँ, परंतु अगर ऐसा कहते कि पैर की अपेक्षा से खंभे के समान है तो वो कठिन भरा, उन्होंने पूरे हाथी को तो जाना नहीं, बस पैर को पकड़ा, यानी मात्र एक अंश को जानना परंतु पूरी वस्तु को नहीं जाना, तो उनका कथन वो बराबर, वो नए भी नहीं कह जाए। ऐसा ही कि वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय, यानी पैर की अपेक्षा पूरा हाथी खंभे के समान, ऐसा हम कहेंगे तो ठीक है। जैसे हम पर्याय की अपेक्षा पूरे द्रव्य को समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहेंगे, वो तो पर्याय है, समय दर्शन या मिथ्या दर्शन पर्याय, तो पूरे द्रव्य को कह देते, उस एक अंश के द्वारा पूरी वस्तु को वैसा कह देते।
जो जीव होता है उसने पूरे द्रव्य को जाना है, प्रमाण से जैसा द्रव्य है ऐसा पूरे को जाना है, और उस वस्तु में से किसी एक अंश को बताएगा उसको यहाँ नहीं। अभी आपने बोला द्रव्य की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, तो उत्तर से जैसा पहले पूरा वस्तु को जानेगा, तो पूरी वस्तु को सही रूप से जानने वाला तो समय वृत्ति ही होता है, इसलिए नए हमेशा समय वृत्ति के ही होते हैं, ऐसा जो कथन आता है इसके पीछे का मंतव्य यह है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु और पहले उसने प्रमाण से जानना चाहिए, यानी ये बात है कि मिथ्या दृष्टि के साक्षी नहीं है। आपने बताया ना व्यवहार में हम बहुत वापस हैं, तो हम मिथ्या दृष्टि है ना, हमको मालूम नहीं है क्या है और किसकी किससे बात करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहले चार शब्द
और वो भी समय दृष्टि तो सारे मति श्रुता अभिज्ञानी वगैरह, परंतु उसमें भी श्रुत ज्ञान के अंश सम्यक श्रुत ज्ञान में लगते, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मति ज्ञान के द्वारा तो हम बस इसको हमने देख लिया, उसमें नहीं उसके नहीं इसके कथन में हो गए या श्रुत ज्ञान में, वो बात आई है। तो वह नए, देखो पहले में पहले उसकी परिभाषा क्या है, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के, ग्रहण की हुई जानी हुई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को, यानी प्रमाण को जानने वाला ज्ञान ही है, जिसने ज्ञान से प्रमाण से वस्तु को जान लिया है, अब क्या कर रहा है वो किसी एक अंश को देखता है, वस्तु के एक अंश को निश्चय करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। वह नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से दो प्रकार का है, यानी द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था उसे द्रव्य कहते हैं, यानी द्रव्य है तो अन्य अन्य पर्यायों को, कभी भूतकाल की पर्याय अलग थी उस पर्याय को प्राप्त हुआ था, वर्तमान में अन्य पर्याय को प्राप्त है, भविष्य में अन्य पर्यायों को प्राप्त होगा, परंतु हम द्रव्य की बात करें। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन हो उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते, यानी वो ज्ञान किसको, वो द्रव्य को ही जान रहा है, द्रव्य ने अपने पर्याय को प्राप्त हुआ द्रव्य, यानी वो कौन सी पर्याय क्या है उसके उसको लक्ष्य में नहीं लेना,
सिर्फ
द्रव्य द्रव्य। यानी वो पर्याय से विरहित वाली बात नहीं ली, क्या लिया, जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था उसमें रखा है ना, पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, समझे
नहीं क्या वापस,
यानी वो पर्याय बिना का पर्याय बिना कैसा कहते हैं ना, परंतु यहाँ पर्याय क्योंकि द्रव्य तो पर्याय से परिणत ही होता है, वो कोई भी हो, भूतकाल की पर्याय से परिणत है, वर्तमान या भविष्यकालीन हो, ये उसको द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते। नहीं अपेक्षा से नहीं, द्रव्य पर्याय से परिणत है, द्रव्य ऐसा बस है, यानी पर्याय की वहां चर्चा नहीं की, पर द्रव्य अखंड पूरा ही द्रव्य लिया, वहां पर्याय से परिणत द्रव्य को यहाँ द्रव्य का, यानी क्या देखो, जो उन उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था उसे द्रव्य कहते हैं, और वो द्रव्य जिसका प्रयोजन है। हाँ पर्याय ने भेद को प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं, यानी भेद को प्राप्त होता है, यानी भेद रूप हम उस द्रव्य को भेद रूप से ग्रहण करते हैं, यानी पर्याय किसी भी, जैसे गुणों का भेद किया, प्रदेशों का भेद किया, काल की अपेक्षा अलग अलग पर्याय बताई, पर्याय ने कोई भी भेद, अकेले जिसको हम पर्याय कहते वो तो पर्याय है ही है, परंतु पर्याय ने द्रव्य में हमने भेद किए उसको पर्याय कहेंगे, उसको पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे, यानी अनंत गुणों की अपेक्षा भेद किए ना, वो भी पर्यायार्थिक नहीं है, या असंख्यात प्रदेश है इतने भिन्न में, वो अखंड को ग्रहण करेंगे तो वो द्रव्यार्थिक होगा, और वो भेद रूप से ग्रहण करेंगे तो पर्यायार्थिक हो जाएगा। देखो परि अर्थात भेद को जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं, वह पर्याय ही जिस नय का प्रयोजन हो उसे पर्यायार्थिक नय कहते, यानी वो भेद का भेद को लक्ष्य करते, यानी द्रव्य को उस भेद रूप से ग्रहण करता है। अभी बताएंगे उसके भेद, द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं। अब ये जो सात नये है ना, नयगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समाभिरूढ़ और एवं भूति, ये सात नयों के नाम, इनमें से द्रव्यार्थिक नय कौन से और पर्यार्थिक नय कौन से उसकी चर्चा यहाँ बता रहे, इनमें से बता रहे। तो द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है, नयगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, यानी इसने द्रव्य को ही लक्ष्य किया, ये सात में से व्यवहार नय का ये स्वरूप है, निश्चय नय और व्यवहार नय वाले जो भेद है उसमें व्यवहार का स्वरूप अलग है और ये इस व्यवहार नय का स्वरूप अलग है, जहाँ निश्चय नय और व्यवहार नय कहते वो बात अलग है, उसकी चर्चा भी नहीं करते, पहले इसको समझेंगे। देखो द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है, नयगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। विधि अर्थात सत्ता को छोड़कर प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ है असत्ता, भिन्न उपलब्ध नहीं होती, इसलिए विधि मात्र ही तत्व होता है, विधि यानी उसकी अस्थि सत्ता। यानी तत्व ने कोई भी बात हमको बतानी है, द्रव्य है तो कैसे वो सत्ता स्वरूप है, तो विधि मात्र ही तत्व है, इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को समस्त का ग्रहण करने वाला होने से संग्रह नय कहते हैं, यानी नैगम की बात बाद में करेंगे। अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती है, इसलिए द्रव्य ही तत्व है, इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, सभी पदार्थों को इकट्ठा जानने वाला है वो संग्रह नय। जैसे हमने कहे द्रव्य, द्रव्य कहने से सभी द्रव्य उसमें आ गए, वो कोई जीव द्रव्य कोई अपुद्गल द्रव्य वो अलग अलग हो गया। यदि हम उसको द्रव्य कहने से उसको संग्रह नहीं कहेंगे, और द्रव्य के हमने छह भेद किए उसको व्यवहार नहीं कहेंगे। अब देखो अपेक्षा बदलने पर वो भी बदलते रहते हैं। अब हमने कहे जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य कहने से द्रव्यों के भेद रूप से ग्रहण करेंगे अगर हमारे अभिप्राय में है तो उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, और हमको सभी जीवों को इंक्लूड करना है हमें कहेंगे जीव द्रव्य अनंत है ऐसा, तो वो संग्रह नहीं हुआ, और उसके मुक्त है संसार ये भेद किए तो वो व्यवहार हुआ। इस तरह वो संग्रह व्यवहार उसका अर्थ बदलते चले जाए। देखो फिर से पढ़ते हैं, यानी समस्त का ग्रहण करने वाला संग्रह सभी को ले लिया उसको। अभी पांचवी लाइन, संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों के, जैसे हमने द्रव्यों को संग्रह नय से जाना तो द्रव्य कह दिया उसमें सभी द्रव्य जाति अपेक्षा चौ द्रव्य इंक्लूड हो गए, तो उन पदार्थों के अब क्या करना, उसमें विधि पूर्वक अवहरण करने को यानी भेद करने को। क्या पूछा आपने, भेद भेद विधि पूर्वक अवहरण करना यानी भेद करना उसको व्यवहार कहेंगे, यानी संग्रह नय से हमने कहे द्रव्य, और वो विधि पूर्वक उसके भेद क्या करने, ये जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य धर्म धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सारे भेद हो गए। उस व्यवहार के अधीन चलने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं, यानी भेद करना हमारा प्रयोजन है तो उसको व्यवहार नय कहते हैं, और उन्हीं को सबको इकट्ठा करने का प्रयोजन है तो उसको संग्रह नय कहते हैं। परंतु उसमें द्रव्य के भेद नहीं किए हमने, ये गुण पर्याय वाला द्रव्य वगैरह वो भेद नहीं किए, द्रव्यों को अखंड रखा है, सबको इंक्लूड किया तो द्रव्य कह दिया वो संग्रह ने, और उसी के भेद किए जीव पुत्र धर्म अधर्म वो व्यवहार ने, सभी जीवों को रखा अखंड ही रखा तो वो संग्रह हुआ, अब उसके संसारी मुक्त भेद किए, मगर वो जीव द्रव्य में उसके क्या क्या भेद है, ज्ञान दर्शन चारित्र है वो कुछ नहीं बात किए, पूरा अखंड द्रव्य रखा है तो ये व्यवहार, इसलिए इसको द्रव्यार्थिक नहीं कहा। चल में बात जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता। क्या कहते हैं, जिसकी सत्ता है ये द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक और ये सॉरी संग्रह और व्यवहार इनमें इंक्लूड हो जाते हैं, यानी जिसकी सत्ता है वो सत्ता वालों को अखंड रूप से ग्रहण करेंगे तो संग्रह नहीं हुआ, भेद रूप से ग्रहण करेंगे तो व्यवहार नहीं हुआ। जैसे मैंने हम सब मानव जाति के जीव वो हमने संग्रह कर दिया, और फिर उसी अमेरिकन है इंडियन है वो सब क्या हो गया, व्यवहार हो गया, भेद किए ना, हम सारे इंडियन है सारे गए ना तो ये संग्रह हुआ, कभी कोई गुजराती कोई महाराष्ट्रीयन कोई तमिल है वो व्यवहार है। इस तरह जो केवल एक को ही प्राप्त नहीं है, अर्थात पहले मैं बताया कि जो है जिसकी सत्ता है वो संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता, इस तरह जो केवल एक को ही प्राप्त नहीं है अर्थात अनेक को प्राप्त होता है उसे नैगम नय कहते हैं, न एकम नैगम, अर्थात संग्रह और असंग्रह रूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नैगम नय है, ये तीनों ही नय नित्यवादी है, क्योंकि इन तीनों ही नयों का विषय पर्याय न होने के कारण इन तीनों व्यवहार संग्रह और असंग्रह यानी संग्रह और व्यवहार क्योंकि इन तीनों ही नयों का विषय पर्याय न होने के कारण इन तीनों नयों के विषय में सामान्य और विशेष काल का अभाव है, यानी उनमें कोई काल की अपेक्षा वैसे भेद नहीं होते थे, पर्यायों को हम कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पर। अभी उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, वो लय चक्रादि में, अभी यहाँ जितना है उसको हम पढ़ेंगे। विशेषार्थ एवं भूत नय से लेकर विलोम क्रम से, अश्विन में विलोम क्रम का अर्थ क्या होता है?
उल्टा।
और सीधे क्रम को क्या कहेंगे? अनुलोम, अनुलोम और प्रतिलोम, ये शब्द आते हैं। प्रतिलोम को ही विलोम के, तो हमने नयों के नाम देखे ना, कौन कौन से? नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। अब कहते एवं भूत नय से लेकर विलोम क्रम से, उल्टे क्रम से। रुजु सूत्र नय तक, पूर्व पूर्व नय सामान्य रूप से और उत्तरोत्तर नय विशेष रूप से वर्तमान कालवर्ती पर्याय को विषय करते हैं। यानी दूसरी भाषा में रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये चारों ही नए हैं, वो पर्याय को विषय करते हैं।
रुजु सूत्र और
रुजु सूत्र शब्द, समभिरूढ़ और वर्तमान कालवर्ती और एवं भूत, किसको विषय करते हैं? वर्तमान कालवर्ती पर्याय।
और क्या लास्ट?
सम एवं भूत, अभी ऊपर लिखा था ना, एवं भूत किसका विषय? उनका विषय क्या है? वर्तमान पर्याय। वर्तमान पर्याय पर यहाँ क्या लिखा? उत्तरोत्तर विशेष रूप से, यानी रुजु सूत्र ने सामान्य से वर्तमान पर्याय के बारे में जो कुछ शब्द एक्सेप्ट किए, जो कुछ उसका वर्णन किया, आगे वाले जो है ना वो शब्दों में विशेषता रखे, ऐसे शब्द हम स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आगे वाला कहता है कि उसमें यही अर्थ होता है तो हम स्वीकार करेंगे, आगे नहीं करेंगे, वो बातें आएगी अभी। यानी सारे वर्तमान पर्याय को विषय करते हैं, परंतु आगे आगे वाले ने ज्यादा स्पेसिफिक है, सूक्ष्म सूक्ष्म स्पेसिफिक है, वो विशिष्ट, उसमें कुछ नियम उसके होंगे उसके लिए। इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं होते हैं। काल यानी पर्याय, ये सामान्य से या विशेष रूप से पर्यायों को विषय नहीं करता। इस विवक्षा से द्रव्यार्थिक नय के तीनों भेदों को नित्यवादी कहा है। वो नित्य रहने वाले की अपेक्षा उसका, वो भले पर्याय से परिणत है परंतु कौन सी पर्याय क्या है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, वो तो मात्र वर्तमान पर्याय को विषय कर रहे हैं, यह तो द्रव्य को विषय कर रहे। अथवा द्रव्यार्थिक नय में काल भेद की विवक्षा ही नहीं है। समझ में आई बात? काल भेद की विवक्षा नहीं, वर्तमान काल का द्रव्य के पूर्व का, वो द्रव्य की चर्चा करो। इसलिए उसमें सामान्य और विशेष काल का अभाव पाए, काल की बात है यहाँ पर, और काल की अपेक्षा बात हम करते हैं द्रव्य की, तो वो पर्याय की अपेक्षा काल में, देखो द्रव्य अनादि अनंत है तो सबको हम द्रव्य कह रहे हैं, तो उसमें ये भूतकाल का द्रव्य, वर्तमान का द्रव्य, ये भेद किसके द्वारा पड़ेगा? पर्याय की अपेक्षा, तो काल की अपेक्षा भेद हुआ उसके अंदर। जैसे अभी वो नारकी है, भूतकाल में श्रेणी का राजा था, भविष्य काल में वो तीर्थंकर होने वाले है, ये क्या है? उसमें काल की अपेक्षा ने पर्याय की अपेक्षा भेद दे दिया। सामान्य में रुजु सूत्र सामान्य हुआ, शब्द उसमें विशेष हुआ, शब्दों ने जिसको एक्सेप्ट किया, समभिरूढ़ ने उसमें और फिल्टर लगाया, वो विशेष विशेष है। देखो अर्थ नय और व्यंजन नय, के भेद से पर्यायार्थिक न दो प्रकार का है, अर्थ है न पदार्थ और शब्द ने उसको बताने वाला शब्द। जैसे पदार्थ और शब्द में क्या भेद है, जैसे घट है पदार्थ है, मिट्टी अभी घट रूप से परिणत है, तो ये घट जो हम देख रहे हैं वो पदार्थ है और घट ये शब्द उसको बताने वाला है। इस तरह से लेना, पदार्थ उसको अर्थ नहीं कहेंगे और जो शब्द है उसके लिए वाच्य जो है, वाच्य तो पदार्थ हुआ, वाचक शब्द है वो शब्द को यहाँ व्यंजन नहीं, शब्द नहीं दिखे। अभी क्या आपने ये जितने वो उसके भेद करो तो उसमें बहुत सारी बातें है, ये सारे ही शब्द नहीं के भेद है आगे आगे वाले, परंतु शब्द ने फिर अर्थ ने व्यंजन ने से दो शब्द दो प्रकार के होते हैं। शंका, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय में भेद किस कारण से है, तो कहते हैं रुजु सूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में, वचन की बात यानी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा यानी वर्तमान पर्याय को विषय कर रहा है और उस संबंधी उसके वचन, तो कहते हैं रुजु सूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में होता है वह काल जिन नयों का मूल आधार है वे पर्यायार्थिक नय है। विच्छेद अथवा अंत जिस काल में होता है उस काल को विच्छेद कहते हैं। वर्तमान वचन को रुजुसूत्र वचन कहते हैं और उसके विच्छेद को रुजुसूत्र वचन विच्छेद कहते हैं। वह रुजुसूत्र के प्रतिपादक वचनों का विच्छेद रूप काल जिन नयों का मूल आधार है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अर्थात रुजुसूत्र के प्रतिपादक वचनों के विच्छेद रूप काल से लेकर एक समय पर्यंत वस्तु की स्थिति का निश्चय करने वाले पर्यायार्थिक नय है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन पर्यायार्थिक नयों के अतिरिक्त शेष शुद्ध अशुद्ध रूप द्रव्यार्थिक नय है। ये बहुत क्लिष्ट कर दिया है।
आगे वाले भेद होते हैं, तो ऋजु सूत्र में जो पर्याय पर्यायार्थिक नहीं है वो किसका कथन करेगा,
पर्याय वर्तमान पर्याय
और वो वर्तमान पर्याय के भेद करके हम लोग कथन करेंगे इसको हम लोग आगे आगे भेद करेंगे इसी के लिए।
नहीं वर्तमान पर्याय को ही वो विषय करता है,
ऋजु सूत्र में एक है पर्याय समिति पर्याय का कथन।
यानी वर्तमान पर्याय रूप से जो अर्थ है पदार्थ जो वर्तमान पर्याय रूप है उसको रुजु सूत्र ने स्वीकार कर लिया।
जो शब्द नहीं है वो वही पर्याय को विशेष रूप से,
विशेष रूप से ने उसमें शब्दों में वो चौकसाई करता है आपके रूप से। वो आएगी बात, अभी सारा विषय तो आने वाला है, अभी तो शुरुआत की, वो सब अब बताएंगे, अभी वही विषय आने वाला है तो आपकी क्लैरिटी अधिक होगी। पहले आप जान लो पूरे, फिर उससे आपके प्रश्नों का जवाब आप ही को मिल जाएगा, क्योंकि आपने अभी सुना ही कहाँ है, ये पहले की याद होगी बात तो अलग बात। रुजु सूत्र ने कोई वचन बताया, अब जो वचन जो बताए जो शब्द यूज किए हैं उसमें ये कहता नहीं ये शब्द नहीं चलेगी ये शब्द चलेगा, आगे आगे नए जो है वो उनके स्वीकार कर। यानी ये पर्यायार्थिक नय सारे जो ये सारे पर्यायार्थिक नय कौन से, रुजु सूत्र है शब्द है समभिरूढ़ है उद्भूत है, पर ये पर्याय को विषय करते, पर पर्याय को तो विषय कर दिया, तो पर्याय को विषय करने संबंधी जो शब्द हमने यूटिलाइज किए है उस शब्द कौन से होने चाहिए कौन से नहीं, ये शब्द नहीं इतने में से यही एक्सेप्ट करेगा। समभिरूढ़ शब्द ने एक्सेप्ट किए हुए शब्दों में से और कुछ उसमें स्पेसिफिकेशन चाहता है, एवं भूत उसमें भी और स्पेसिफिकेशन चाहता है, ये चाहता है, वो भी बताएंगे। इन पर्यायिक नियम के अतिरिक्त शेष शुद्ध अशुद्ध रूप द्रव्यार्थिक नियम है। देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक नियम पूरा संग्रह करना उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक, उसके भेद करके फिर वो करना वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक। द्रव्य को ही विषय किया है परंतु उसका प्रयोजन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करना है कि उसमें भेद बताना है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। निगम तो दोनों को विषय करना, उनमें से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से भेद रूप पर्यायार्थी ने दो भेद दो प्रकार के बताए थे ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से भेद रूप और लिंग संख्या काल कारक पुरुष और उपग्रह के भेद से अभेद रूप, इसका अर्थ देखते थे। केवल वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को अर्थ नय कहते हैं। क्या कहना है? पर्याय कौन सी होती है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय मालूम है, ये ज्ञान गुण के पर्याय अन्य वो सारे अर्थ पर्याय कहते हैं, गुणों के पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेश गुण की अपेक्षा से कहेंगे उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, उसे मनुष्य पर्याय उसको भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, उसको भी कहते हैं, या आकार कैसा उसको भी कहेंगे। व्यंजन पर्याय कहने के दो भाग, तो उसको अर्थ नहीं कहेंगे। अभी उसने क्या है, पर्याय से परिणत द्रव्य व्यंजन, देखो अभी अर्थ और व्यंजन की बात छोड़ दो, कि इन्हें जो वर्तमान पर्याय रूप से जो वस्तु है, वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को अर्थ नहीं कहते। यहां पर शब्दों के भेद से अर्थ में भेद की विवक्षा नहीं है। फिर से पूरा वाक्य पढ़ेंगे, उनमें से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से भेद रूप, हाँ 87 पेज है, ऊपर से दूसरी लाइन है। देखो पर्यायार्थिक नय के दो भेद है, अर्थ नय और पर्यायार्थिक नय के, अर्थ नय और व्यंजन, ये जो यहाँ लिखा ना पेज नंबर 86 पर लिखे थे। पर्यायार्थिक नय के दो भेद है, अर्थ नय और व्यंजन है शब्द नय, ये पहले दो भेद है। अर्थ नय का ही अर्थ होता है रुजु सूत्र नय को अर्थ नय कहेंगे, रुजु सूत्र ने मात्र वो वर्तमान वो पर्याय से परिणत द्रव्य को स्वीकार कर रहे, इन्हें वर्तमान पर्याय को विषय कर रहे। शब्द नय में तीन भेद है, कौन से तीन? शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, यानी वो मूल भेद, मूल का नाम भी शब्द नय है, इसलिए वहां व्यंजन नय शब्द डाला। अर्थ नय और व्यंजन नय दो बात की, तो व्यंजन नय का ही दूसरा अर्थ शब्द नय, तो शब्द नयों ने उस वाचक शब्द को स्वीकार किया और उसमें फिर तीन भेद किए, कौन से? शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत। फिर से मूल नाम क्या है? पर्यायार्थिक नय, आप ऊपर लिखो पर्यायार्थिक नय, उसमें दो करो, पहला है अर्थ नय और ब्रैकेट में लिखो रुजु सूत्र नय, दूसरी ओर लिखना व्यंजन नय, और ब्रैकेट में लिखो शब्द नय। रुजु सूत्र नय, व्यंजन नय लिखा दूसरा, व्यंजन नय के ब्रैकेट में लिखो शब्द नय, हाँ शब्द नय। अभी ये शब्द नय के तीन और भेद है, जो शब्द समभिरूढ़ और एवं रूढ़, यानी मेन प्रकार उसका भी नाम शब्द नहीं, और उसका जो भेद है उसका भी नाम शब्द नहीं, इसलिए जो मेन है उसको हम व्यंजन नहीं कह रहे। तो व्यंजन कहेंगे उसको, है तो वो शब्द वाला, पर उसको व्यंजन कहेंगे, उसके भेद को शब्द कहेंगे, तो कंफ्यूजन कम होगा। तो व्यंजन नय के तीन भेद, अर्थ नय, सम भी रूढ़ नय, सॉरी अर्थ नहीं शब्द, क्या शब्द कहना था मैं गलत बोल,
शब्द नय,
व्यंजन नय के तीन भेद, शब्द नय, सम भी रूढ़ नय और एवं भूत नय। एवं भूत नय नहीं नहीं नहीं, बस अभी तो इतने, यानी हमने पर्यायार्थिक दो देखे, अर्थन है और व्यंजन है, बरोबर। अर्थन है का दूसरा नाम रुजु सूत्रन है, व्यंजन ने के तीन भेद, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, बस यहाँ तक पढ़ा। अब देखो फिर ये वाक्य पढ़ेंगे 87 पेज पर सेकंड है, उनमें से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से भेद रूप, ये किसके भेद चल रहे, पर्यायार्थिक के, और लिंग संख्या काल कारक पुरुष और उपग्रह के भेद से अभेद रूप केवल वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को अर्थनय कहते हैं, यानी वर्तमान समयवर्ती वस्तु को उसने विषय किया उसको वो है अर्थनय। तो उसमें कोई भेद नहीं डाले, जैसे लिंग करते थे लिंगवाचक शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द, पुल्लिंगी शब्द, नपुंसक लिंगी शब्द, उसमें कोई भेद नहीं किया, कोई भी हो उसके एक्सेप्ट किया, वो शब्द वर्तमान वस्तु को बता रहे हैं, बस ये संख्या है ना, वो एक दो तीन, जिस व्याकरण की अपेक्षा उसमें कोई भेद होता है तो उसकी कोई बात नहीं है, सबको एक्सेप्ट कर लिया। काल है ने भूतकाल वर्तमान काल सबको एक्सेप्ट किया। एक कारक, कारक यानी वो सप्तमी विभक्ति है या अंक द्वितीय है कि तृतीय है उसकी कोई चर्चा नहीं, तो उसमें कोई भेद है तो भी चल जाए, वो वर्तमान समय को विषय करता है ना, बस इतना ही बात है। पुरुष यानी प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष जो आते हैं ना, वो आप क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उस अच्छा वो गुजराती वाली, हाँ। और उपग्रह ने शब्दों के साथ जो कुछ एक अक्षर जोड़ देते ना, भी उपसर्ग लगाए और उपसर्ग लगाया, इसे कोई मोद है प्रमोद है वैसे, तो कहते ऐसे उसने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, सभी शब्दों को उसने एक्सेप्ट किया, वो है अर्थनय। उपग्रह ने वो संस्कृत में उपग्रह होते हैं ना, जैसे धातु के पहले वो भी उपसर्ग लगाया या भाव विभाव वगैरह ऐसा, या शांत है प्रशांत है, वो क्या हुआ उसको विशेषण नहीं कहते, उसको उपसर्ग ही कहते हैं।
उपग्रह उपसर्ग,
मैंने उपसर्ग कहा ना उपग्रह, या उपग्रह का अर्थ और भी होगा, यहाँ उपग्रह शब्द उपसर्ग नहीं है, मैंने उपसर्ग बताया। उपग्रह में क्या लिया है जरा देख लेते ना, उपसर्ग ही लिया, मैंने रमते के बदले विरमति, तिष्ठते के प्रतिष्ठते वगैरह वगैरह, उपसर्ग लगाने पर जो होता है उसी को उपग्रह का, आगे उपसर्ग ही लिया 90 पेज पर, रमते विरमते प्रतिष्ठति के बदले प्रतिष्ठते, ये संस्कृत व्याकरण में उसको आत्मनेपद परस्मय पद वगैरह बहुत सारे होते हैं, हिंदी मराठी में ऐसे नहीं आते ज्यादा। अभी हम क्रम से पढ़ेंगे इसको, ये क्या है इसकी थोड़ी हमने आपको बात बताई, इसकी विस्तार से चर्चा आने वाली है, यानी उसने उसमें कौन से शब्द यूज करना उसकी कोई बात नहीं है, सभी शब्दों के एक्सेप्ट किया, वो मात्र वर्तमान पर्याय वाले द्रव्य को बता रहा है, वर्तमान समयवर्ती वस्तु का निश्चय करने वाला नहीं, नहीं क्योंकि नए शब्दों में बताया जाता है, इसलिए शब्दों की बात, वाचक शब्द जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, कोई भी हो उसमें इस संबंधी कोई भी बातें होती हो तो सबको एक्सेप्ट करता है, वो है अर्थ नहीं। और व्यंजन ने शब्द के भेद से वस्तु में भेद करनी, भेद का निश्चय करने वाले नए व्यंजन नहीं कहे, यानी वो वर्तमान समयवर्ती वस्तु है पर वो वस्तु को बताने वाले है। अलग अलग शब्द वर्तमान वस्तु को बताते हैं, परंतु वो शब्द अलग क्यों यूज किए, इसलिए उसको वो नए भी अलग बताए। जैसे स्त्री के लिए भार्या भी शब्द आता है, स्त्री भी आता है, कलत्र नाम का भी आता है, तो उसमें स्त्रीलिंगी होने चाहिए, वो कलत्र नपुंसकलिंगी शब्द है। जैसे मराठी में है हमसे कुटुंब है, कुटुंब ने पत्नी के लिए कुटुंब भी कहने की बात है, तो कुटुंब नपुंसकलिंगी शब्द है। हाँ दारा तो स्त्री, हाँ पुल्लिंगी, तो ये अलग अलग लिंग वाले वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें वो उसके अर्थ भी अलग ले जाएंगे, उसके अपेक्षा उसमें भेद डाले, ये हो जाएंगे व्यंजन नय। इनमें ऋजु सूत्र नय को अर्थ नय समझना चाहिए। अभी हमने ऊपर एक टेबल बनाया ना, दो उसके भेद किए थे, अर्थ नय ने ऋजु सूत्र ने, क्योंकि ऋजु यानी सरल अर्थात वर्तमान समयवर्ती पर्याय मात्र को जो सूत्र यति अर्थात सूचित करे उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। इस तरह वर्तमान पर्याय रूप से अर्थ को ग्रहण करने वाला होने, अर्थ ने पदार्थ द्रव्य, यानी वर्तमान पर्याय रूप से द्रव्य को वो स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसके कारण यह नय अर्थ नय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब शंकाकार पूछ रहे हैं, नयगम संग्रह और व्यवहार नय भी तो अर्थ नय है, फिर भी यहाँ पर अर्थ नयों में केवल ऋजु सूत्र नय का ही ग्रहण क्यों किया? समाधान, अर्थ को विषय करने वाले होने के कारण वे भी अर्थ नय है, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु वे तीनों नय द्रव्यार्थिक रूप होने से होने के कारण पर्यायार्थिक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? वहां द्रव्य का प्रयोजन है, पर्याय का नहीं, मात्र हम अर्थ नय ऐसा भेद कर रहे होते तो पर्यायार्थिक नय में हमने अर्थ नय वाला भेद लिया। अर्थ नय में पदार्थ को विषय करने वाला है, वो तो द्रव्यार्थिक भी हो सकता है, पर्यायार्थिक भी हो सकता है, हमने पर्यायार्थिक के अर्थ नय की बात ली और पर्यायार्थिक के व्यंजन नय की बात अलग बता दी। तो ये संग्रह और व्यवहार और ये जो नयगम वाले है वो भी द्रव्य को विषय करते, वो भी अर्थ को ही विषय करते हैं, हाँ परंतु वहाँ पर्याय की बात नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं वो अर्थ नय है, इसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु वो तीनों कैसे द्रव्यार्थिक रहे, वो पर्यायार्थिक नहीं है। यहाँ हमारी चर्चा पर्यायार्थिक की चल रही है, यानी मात्र अगर हम तीन ही भेद करेंगे पूरे नयों के, अर्थ नय शब्द नय और वहाँ तीसरा ज्ञान नय हो जाएगा, वो अपेक्षा अलग है, ज्ञापन नहीं चल सकता। हाँ अर्थ नय में फिर अर्थ नय के दो भेद हो गए, द्रव्यार्थिक पर्याय भेद, अर्थ नय और शब्द नय, शब्द नय केवल उसमें आता है पर्यार्थिक, वो ऐसे मेन शब्द नय लेंगे तो पूरे का अर्थ नय शब्द नय वो अलग होगा, यानी उसके क्लासिफिकेशन के तरीके अलग है। हम अभी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक हमारे मेन डिवीजन है और उनके हम अभी भेद कर, अभी इतनी बात ख्याल, पूरे जैसे पूरे नए चक्र का बात वो बात है, विषय अलग है, वहाँ अर्थ नय ने पदार्थों को विषय करता है, शब्द नय शब्दों को विषय करता है, और ज्ञान नय ने वो ज्ञान नय उसका जो है उसको विषय करता है, वो बात अलग है, वो तीन भेदों की चर्चा अलग है। यहाँ वो सैताल सैतालीस नय में अलग नहीं, सैतालीस नय तो और अलग है, नए चक्र में तीन देखो, एक तो ये निश्चय व्यवहार वाले भेद अलग है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाले भेद अलग है, सात नयों की बात वो अलग है, तीन नए अलग है, اور 47 میں الگ. 47 نے معلوم ہے؟ 43 نے سنے کہ نہیں سنے؟
سنے
نہیں
والد.
دروے نے پریا نہیں, استتو نے ناستتو نے, استتو نستتو نے اوکتو نہیں, استتو اوکتو ناستتو اوکتو استتو ناستتو اوکتو وکلپ نے اوکلپ نے نام نے استھاپنا نے دروے نے بھاو نے نام استھاپنا دروے بھاو سامان وشیش سامان وشیش نتیہ نتیہ سروت اسرو شونیہ شونیہ جان دے دیتنے نیتنے انیتنے ایسے بہت سارے ہیں.
سادھارن
نہیں نہیں وہ تو شکتی ہے. نیت انیت سوانے اسوانے کالنے اکالنے ایشور نے انیشور نے گن گن نہیں گنی نہیں ہوئی وہ اس میں آتا. وہ کرتر اکرتر وکتر کسی بھی سب میں
تھوڑا سا
47 نہیں ہاں نہیں 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 یاد ہے سروگت اسرگ شونیہ اشونیہ جان دے جتنے جان دے ادوت نے نیت نے انیت نے سو نے سو اپنے کال نے اکال نے پورسکار دیو نتیہ پورسکار دیو ایشور انیشور گنی اگنی کرتر اکرتر بکتر بکتر کریا گیان نشچے ویوہار اشدھ شدھ یہ 47 میں یہ اس کی چرچا بھی چھوڑ دو. ابھی اپنی کیا وشے چل رہا ہے اپنی سات نیوں میں لگانا ہے. یہاں درویاتک پریاتک دو بھید کیے پریاتک کے دو بھید کیے ارتھن ہے اور ویجن نے اور ویجن نے کے تین بھید کریں گے شبد سمبھی روڑ ایوم اس کے بعد یہاں چل رہی ہے. نیچے کا پیراگراف دیکھو نیچے کی لائن ویجن نئے تین پرکار کا ہے شبد سمبھیروڑ اور ایوم بھوت. یہ ہر ایک کے آگے نئے شبد لگا تھا کیونکہ انہوں نے پہلے بتایا ویجن نئے تین پرکار کا ہے. شبد کے آدھار سے ارتھ کے گرہن کرنے میں سمرتھ شبد نئے یعنی شبدوں کے کارن اس میں ارتھ میں بھی ڈالیں گے. رجو سوتر نے ارتھ نہیں تھا وہ سبھی ورتمان سمیورتی دروے کو وشے کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو کوئی شبد ہے وہ لنگ کا ڈفرنس ہو وچن کا ڈفرنس ہو سب کو ایکسپٹ کیا تھا. شبد نہیں اس میں بھی ڈالے کیونکہ یہ نئے لنگ سنکھیا کال کارک پرش اور اپگرہ کے ویبھیچار کی نیورتی کرنے والا ہے یعنی اس میں دوشوں کو ٹالنے والا ہے یعنی لنگ سمبندھی دوشوں کو ٹال کر سویکار کرے گا. یہ کہنا چاہیے ویبھیچار کی نیورتی یعنی دوشوں کو ٹالنے والا دوشوں کو ٹال کر اس کو سویکار کرے گا. ابھی اس کے یہاں ادھارن بتا رہے ہیں اور یہ ادھارن تو سنسکرت بھاشا کی مکھیتا سے دیے ہوئے ہیں. استری لنگ کے ستھان پر پلنگ کا کتھن کرنا اور پلنگ کے ستھان پر استری لنگ کا کتھن کرنا آدی لنگ ویبھیچار ہے. اب اس کے لیے جو ادھارن دیے جیسے تارکا سواتی تارکا سواتی ہے اس پریوگ میں تارکا شبد استری لنگ ہے اور سواتی شبد پلنگ ہے اس لیے سریلنگ کے ستھان پر پلنگ شبد کا پریوگ کرنا لنگ ویبھیچار ہے. اوگمو ودیا اوگم کا ارتھ ہوتا ہے گیان اس پریوگ میں اوگم شبد پلنگ ہے اور ودیا شبد سریلنگ ہے. ابھی ہم اپنے ہندی میں کہیں تو گیان کو وہ گیان کہیں گے تے گیان وہ تو نقصی لنگی ہوگا اور ودیا تو سری لنگی ہوگا. اس لیے پلنگ کے ستھان پر سری لنگ شبد کہنے سے لنگ ویبھیچار ہے. یہ سمجھ میں آئی بات अवगम और विद्या भले एकार्थवाची है परंतु शब्द ने उसको अलग अलग स्वीकार करेगा। क्या कह रहे
स्वाति?
स्वाति हमारे तो लड़कियों के नाम है तो स्वाति तारका स्वाति
तारा के इनपेक्ट लगता है।
वीणा आतोद्यम आतोद्य ने वाद्य नहीं नहीं ऊपर लेगा ना स्त्रीलिंगे पुल्लिंगा विधानम तारका स्वाति पुल्लिंगे स्त्री अभिधानम अवगमो विद्या इति बराबर है उन्होंने बताया बराबर। अब नीचे हम पढ़ रहे थे वीणा आतोद्यम वीणा आतोद्य है यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिंग है और आतोद्य शब्द नपुसक लिंग है यानी वीणा यह वाद्य है ना वीणा वाद्य है तो वीणा तो हम स्त्रीलिंग शब्द है और वाद्य तो नपुसक लिंग इसलिए स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुसक लिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। आयुधम शक्ति ही आयुध शक्ति है यहाँ पर आयुध शब्द नपुसक लिंग है और शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है या आयुध को शक्ति भी कहते हैं उसने शक्ति मारी ऐसा भी कहते हैं ना पहले ऐसे आता था इसलिए नपुसक लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। ये समझ में व्यभिचार क्या है दोष क्या पटो वस्त्रम पट वस्त्र है यहाँ पर पट शब्द पुल्लिंग है और वस्त्र शब्द नपुसक लिंग है यानी वस्त्र के लिए पट शब्द ही आता बंधु नपुसक लिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है पट पुल्लिंग और वस्त्र नपुसक लिंग तो ये भी पुल्लिंग के स्थान पर नपुसक लिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है यानी वो शब्द यूटिलाइज करने के लिए उनका मनाही है। एकार्थ वाची भले हो परंतु वो अलग अलग लिंग है तो वो ये नए उसको स्वीकार नहीं करता शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता अर्थ ने स्वीकार करता। आयुधम परशुः आयुध फरसा है यहाँ पर आयुध शब्द नपुसक लिंग है और परशु शब्द पुल्लिंग है इसलिए नपुसक लिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने लिंग व्यभिचार क्या हो सकता। अब संख्या व्यभिचार एक वचन आदि की जगह द्विवचन आदि का कथन करना संख्या व्यभिचार है जैसे नक्षत्र पुनर्वसु है इन्हें पुनर्वसु नक्षत्र बताया है सातवां नक्षत्र और अनेक तारकाओं का समूह है तो यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और पुनर्वसु शब्द द्विवचनांत है इसलिए एक वचन के स्थान में द्विवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। नक्षत्रम शतभिषज नक्षत्र शतभिषज है यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और शतभिषज शब्द बहुवचनांत है इसलिए एक वचन के स्थान में बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। गोदौ ग्राम गोदौ ग्राम है यहाँ पर गोदौ शब्द द्विवचनांत है और ग्राम शब्द एक वचनांत है इसलिए द्विवचन के स्थान में एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। पुनर्वसु पंचतारका पहले नक्षत्र पुनर्वसु कहा था है ना अब कहते पुनर्वसु पंचतारका पुनर्वसु पांच तारका है यहाँ पर पुनर्वसु द्विवचनांत है और पंचतारका शब्द बहुवचनांत है इसलिए द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। आमराहा वनम, आमों के वृक्ष वन है। यहाँ पर आम्र शब्द बहुवचनांत है और वन शब्द एक वचनांत है। आम कहने से आम के वृक्ष को लेना, जहाँ अनेक आम के वृक्ष है क्योंकि तो यहाँ बहुत से आम है, आम ने आम के वृक्ष, तो उसी को वन कह दिया। इसलिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। देव मनुष्या उभौ राशि, देव और मनुष्य ये दो राशि है। यहाँ पर देव मनुष्य शब्द बहुवचनांत है, देव मनुष्याहा है ना, और राशि शब्द द्विवचनांत है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर द्विवचन शब्द का कथन करना संख्या व्यभिचार है। अब काल व्यभिचार की बात कर रहे हैं। भविष्यत आदि काल के स्थान पर भूत आदि काल का प्रयोग करना काल व्यभिचार है। जैसे विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता, जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा। यहाँ पर विश्व का देखना भविष्यत काल का कार्य है, परंतु उसका भूतकाल के प्रयोग द्वारा कथन किया गया है। जैसे हम विश्व दृश्वा छोड़ दो, हम कहेंगे ना अभी वो महावीर के माता का नाम मालूम है, त्रिशला माता, तो त्रिशला को तीर्थंकर पुत्र होगा ऐसा कहेंगे। तीर्थंकर तो बाद में होगा, नहीं पर ये हुआ है यहाँ नहीं, देख लिया है ऐसा पुत्र होगा। वो भविष्य का काल है और कोई भी देख लिया, वो सर्वज्ञ है ना, विश्व को देखने वाले सर्वज्ञ है, तो इसको सर्वज्ञ पुत्र होगा। तो सर्वज्ञ तो बाद में होगा, पहले पुत्र होगा। इसलिए यहाँ पर भविष्यत काल का कार्य भूतकाल में कहने से काल व्यभिचार है। इसी तरह भावी कृत्यम आसीत, आगे होने वाला कार्य हो चुका, यहाँ पर भी भूतकाल के स्थान पर भविष्यत काल का कथन करने से काल व्यभिचार है। व्याकरण के ये इसी ना, लिंग वचन वगैरह ग्रामेटिकली सही चाहिए, तभी वो भले वो एक ही अर्थ बताने वाले और उसके एक्सेप्ट करते हैं वाणी, यानी लौकिक में या भाषा में साहित्य में उसको स्वीकार है, परंतु वो शब्द ने उसको स्वीकार नहीं कर, ये कहना है। जास्ती चौकसा ही करता है। अब यही रुकेंगे, अभी साधन वाली बात कर रहे हैं। जावा